بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراج ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی آدرنیہ شروتاؤں کی سیوا میں حسن عباس اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ شروتاؤ صدا کی بھانتی آج بھی اپنے کارکرم کا آرمبھ ہم قرآن مجید کی تلاوت اور انواد سے کریں گے۔ قرآن مجید کے سورہ یونس کی 47ویں، 48ویں اور 49ویں آیتوں کی تلاوت کا شرے پراپت کر رہے ہیں قاری قاسم رضیعی۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولكل أمة رسول، فإذا جاء بينهم بالقسط وهم لا يظلمون، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، إذا جاء فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، صدق الله العلي العظيم۔
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے، اور ہر سمودائے کے لیے ایک رسول ہے، تو جب ان کے پاس ان کا رسول آ جاتا ہے تو ان کا فیصلہ نیائے پوروک کر دیا جاتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ और कहते हैं, यदि तुम सच्चे हो तो ये धमकी कब पूरी होगी? कह दो, मुझे न तो अपने बुरे का अधिकार है न भले का, बस जो अल्लाह चाहे वही होता है। हर जाति के लिए एक नियत समय है, जब उनका नियत समय आ गया तो उससे न एक घड़ी पीछे रह सकते हैं और न आगे बढ़ सकते हैं।
ये रेडियो तहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, हमारा ये प्रसारण आप शार्टवे में 25 मीटर बैंड बराबर 11,860 किलोहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं। आज शनिवार है, उर्दी बहिश की 2, शव्वाल की 1 और अप्रैल की 22 तारीख। दोस्तों, आज ईद उल फितर है, इस शुभ अवसर पर हम आप सभी को बधाई प्रस्तुत करते हैं। इस कार्यक्रम में प्रस्तुत होने वाले कार्यक्रम इस प्रकार हैं। सबसे पहले आप सुनेंगे विश्व समाचार, उसके बाद राजनीतिक चर्चा, उसके बाद हम ईद उल फितर के अवसर पर आपको एक विशेष कार्यक्रम सुनवाएंगे और उसके बाद आप सुनेंगे अंतिम कार्यक्रम अच्छी आदतें। ताज़ा और विस्तृत खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट देखते रहिए, पता है parstoday.ir/hi। आप सैयद मीसम से विश्व समाचार सुनिए। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। ईरान, भारत और इराक समेत आज कई देशों में ईद उल फितर का जश्न मनाया गया है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने ईद की नमाज के खुतबों में कहा है कि दुश्मन ने अपनी नीति बदल दी है, लेकिन हम उसे फिर भी हराएंगे। राहुल गांधी ने सरकारी घर की चाबी लौटाते हुए कहा है कि वो सच बोलने की कीमत चुका रहे हैं। रूस भारत की तरह अब पाकिस्तान को भी रियायती दरों पर तेल बेचेगा। अब आप विस्तार से विश्व समाचार सुनिए। आज ईरान, इराक, भारत और पाकिस्तान समेत कई देशों में ईद उल फितर का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जबकि सीरिया, सऊदी अरब, तुर्की, यूएई, कतर, बहरीन, मिस्र, जॉर्डन, फिलिस्तीन, अल्जीरिया, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिज़िस्तान और कुवैत में शुक्रवार को ईद उल फितर मनाई गई। ईरान में ईद के उपलक्ष्य में 2 दिनों का अवकाश होता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पाकिस्तान में बोहरा समुदाय ने शुक्रवार को ही ईद मना ली थी। इस्लामी गणराज्य ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी ने मुस्लिम देशों को ईद फितर की बधाई दी है। उन्होंने दुनिया के मुस्लिम देशों के नाम अलग अलग संदेशों में ईद उल फितर के आगमन पर इस्लामी देशों के नेताओं और जनता को प्रकृति की ओर लौटने की ईद और रोजेदारों और ईश्वर के नेक बंदों के लिए गर्व और खुशी के दिन की बधाई दी। ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी ने अपने ईद संदेश में उम्मीद जताई कि इस शुभ ईद की बरकत से इस्लाम की अमर शिक्षाओं और पैगम्बर की जीवनदायी शिक्षाओं की छत्रछाया में इस्लाम के जीवनदायक आदर्शों की प्राप्ति, इस्लामी उम्मा की बढ़ती एकता और एकजुटता और इस्लामी देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। ईरान के विदेश मंत्री ने मुस्लिम देशों और राष्ट्रों को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने मुस्लिम देशों के नाम भेजे गए संदेश में इस्लामी राष्ट्र को ईद उल फितर की बधाई दी और दुआ की कि महान ईश्वर से दुआ है कि ये मुबारक दिन इस्लामी राष्ट्रों व मुसलमानों की एकता, समरसता और एक दूसरे से सहयोग का कारण बने। विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लायन के बधाई संदेश में आया है कि ईद ए फित्र के उपलक्ष्य में विभूतियों व बरकतों से भरी ईद सबके लिए कामना करता हूं। विदेश मंत्री के ईद उल फित्र के संदेश में आया है कि मुस्लिम देश मुसलमानों के बीच भाईचारे को मजबूत करके मुस्लिम समाज को आगे बढ़ाने का संकल्प लें। ईद फित्र के मुबारक पर्व पर ईरान भर में एक ऐश्वर्यवादी मोमिन जनता ने एक महीने के रोजे रखने और ईश्वर की उपासना में ये पूरा समय बिताने के बाद बड़े भव्य रूप से ईद की नमाज अदा की और ईश्वर का आभार व्यक्त किया। नमाज ईद उल फित्र का सबसे भव्य समारोह तेहरान के इमाम खुमैनी नमाज केंद्र में हुआ, जहां इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली खामनाई की इमामत में नमाज ईद अदा की गई। नमाज में लाखों की संख्या में लोगों ने भाग लिया, जबकि देश के वरिष्ठ अधिकारियों और अनेक देशों के प्रतिनिधि भी ईद की नमाज में शामिल हुए। इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता ने नमाज ईद के खुतबों में देश की जनता और समूचे इस्लामी जगत को ईद फित्र की मुबारकबाद दी। उन्होंने ईद उल फित्र के पहले खुतबे में ईरान के लिए इस साल के पवित्र रमजान को अध्यात्म, विनम्रता और दुआओं से भरा हुआ महीना करार दिया। सुप्रीम लीडर ने कहा कि इस साल का रमजान का महीना पुरजोश और बरकतों व रहमतों से भरा हुआ था और शबे कद्र में लोगों, विशेषकर युवाओं ने अच्छे अंदाज में इबादत की और उनकी आंखों से आंसू जारी हुए। आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली खामनाई ने विश्व कुद्स दिवस की ओर इशारा करते हुए कहा कि इस साल के विश्व कुद्स दिवस की रैलियों में ईरान और पूरी दुनिया के लोगों ने ऐतिहासिक और अद्वितीय रूप से भाग लिया। हालांकि शबे कद्र की वजह से लोगों ने सारी रात इबादत की और फिर सुबह रोजे की हालत में रैलियों में भरपूर तरीके से भाग लिया और दुश्मनों के मुंह पर जोरदार तमाचा रसीद किया। सुप्रीम लीडर नमाज ईद के दूसरे खुतबों में पवित्र रमजान की विशेषताओं में इरादे की मजबूती को करार दिया और कहा कि इरादा एक ऐसी चीज है जिसे ईश्वर ने इंसान के विकास के लिए उसे प्रदान किया है और इंसान को चाहिए कि उससे रमजान के महीने के बाद भी ईश्वर की प्रसन्नता और प्रगति के लिए प्रयोग करे। सुप्रीम लीडर ने जनता को एकता और एकजुटता का प्रदर्शन करने की अनुशंसा करते हुए कहा कि दुश्मन हमारी एकता और आपसी सहयोग का विरोधी है, इसलिए दुश्मन की साजिशों को नाकाम बनाने के लिए हमें एकता और एकजुटता का प्रदर्शन करना चाहिए। इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता ने कहा कि दुश्मन जनता के बीच भ्रांतियां पैदा करना चाहता है और 10 साल पहले किसी दूसरे तरीके से काम करता था और पहले दुश्मन सैन्य तरीके से दूसरे देशों में दाखिल होता था, लेकिन अब उसने अपनी नीति बदल दी है, इसलिए कि जिस तरीके से दुश्मन अफगानिस्तान में दाखिल हुआ और उसे जिस तरह से नाकामी और निराशा हाथ लगी और पराजय का सामना हुआ, ये उसकी ताज़ा मिसाल है। सुप्रीम लीडर ने कहा कि अब उसने अपनी नीति बदल दी है, लेकिन इसके बावजूद हम दुश्मन को पराजित करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा है कि ईरान अतीत की ही भांति यमनी जनता के अधिकारों और इस देश की जनता द्वारा स्वयं भाग्य निर्धारित करने के लिए बातचीत का समर्थन करता है। ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी ने शुक्रवार को यमन की सर्वोच्च राजनीतिक परिषद के प्रमुख मेहदी अल मशाद के टेलीफोन कॉल के जवाब में यमन की सर्वोच्च राजनीतिक परिषद के सदस्यों, यमनी जनता और प्रतिरोधकर्ता राष्ट्र को बधाई दी और यमनी बंदियों की, जो वास्तव में स्वतंत्र हैं न कि बंदी, सामूहिक रिहाई का स्वागत किया और इसे इस देश की प्रिय जनता के प्रतिरोध का परिणाम करार दिया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और मानहानि के एक मामले में अदालत द्वारा अयोग्य ठहराए गए सांसद राहुल गांधी ने शनिवार को अपना सरकारी बंगला खाली कर दिया है। अधिकारियों को बंगले की चाबी सौंपते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें सच बोलने की कीमत चुकानी पड़ रही है और वो इसके लिए हर कीमत चुकाने को तैयार हैं। बंगला खाली करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, यह घर मुझे हिंदुस्तान की जनता ने दिया था, लेकिन सरकार ने इसे छीन लिया। मैं सच्चाई के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूं, लेकिन सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ूंगा। लोकसभा सचिवालय के उप सचिव मोहित राजन की ओर से 27 मार्च को एक नोटिस में राहुल गांधी को सांसद के तौर पर आवंटित सरकारी आवास खाली करने के लिए एक महीने का नोटिस दिया गया था। पिछले महीने गुजरात की एक अदालत ने एक भाषण के दौरान ये सभी चोर मोदी क्यों होते हैं सवाल पर उन्हें मानहानि का दोषी पाया था, जिसके बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। पिछले महीने सूरत की अदालत ने 4 साल पुराने आपराधिक मानहानि केस में उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी। जम्मू और कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को, जिन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचार के प्रति दृष्टिकोण के बारे में बीते दिनों द वायर को दिए एक इंटरव्यू में चौंकाने वाली बातें पेश की थी, भारत की शीर्ष जांच एजेंसी सीबीआई ने 28 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुलाया है। रिपोर्ट के अनुसार वे सवालों के जवाब देने के लिए नई दिल्ली में सीबीआई के कार्यालय जाएंगे। विश्वसनीय सूत्रों की माने तो ये पूछताछ रिलायंस इंश्योरेंस से जुड़े मामले में होगी। इसे लेकर आरोप लगाया गया है कि कश्मीर में इस बीमा योजना को लाने के लिए आरएसएस और भाजपा नेता राम माधव ने कथित तौर पर मलिक पर दबाव बनाने का प्रयास किया था, हालांकि उस समय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल का पद संभाल रहे मलिक ने इसे रद्द कर दिया था। उल्लेखनीय है कि 14 अप्रैल को दिए इंटरव्यू में इस योजना के बारे में विस्तार से बताया गया था कि कैसे उनके द्वारा इसे रद्द करने की अगली सुबह ही राम माधव उनके घर पहुंचे थे और इस योजना के बारे में सवाल जवाब किए थे। मलिक के अनुसार जब उन्होंने बताया कि वे इसे कैंसिल कर चुके हैं तब माधव कुछ परेशान हुए थे। रूस ने भारत की तरह ही अब पाकिस्तान को भी रियायती दरों पर कच्चा तेल बेचने का फैसला किया है, जिसके बाद पाकिस्तान ने रूस से तेल खरीदने के लिए अपना पहला ऑर्डर दिया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के साथ इंटरव्यू में पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री मुसादिक मलिक ने कहा है कि कुछ दूसरे देशों की तरह उनका देश भी रूस से रियायती दरों पर कच्चा तेल खरीदने के लिए प्रयास कर रहा था, जिस पर रूस ने सहमति जता दी है। उन्होंने कहा कि यह एक बड़ा कदम है। मलिक दिसंबर 2022 में एक प्रतिनिधिमंडल के साथ रूस गए थे और उन्होंने तेल और गैस खरीदने के लिए बातचीत की थी। हालांकि पाकिस्तानी मंत्री ने यह नहीं बताया कि रूस से किस कीमत पर और किस मुद्रा में कच्चा तेल खरीदा जाएगा। भारत और चीन भी रूस से रियायती दरों पर कच्चा तेल खरीद रहे हैं। दोनों ही देशों ने कीमतों को सार्वजनिक नहीं किया है। ऐसा कहा जा रहा है कि दोनों देश उस निर्धारित कीमत का उल्लंघन कर रहे हैं जो अमरीका ने रूसी कच्चे तेल के लिए तय की है। उत्तर कोरिया इस हफ्ते अपना पहला जासूसी सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है। इससे पहले जापान ने अपनी सेना को देश की वायु सीमा का उल्लंघन करने वाले किसी भी तरह के उपकरणों को तबाह करने का आदेश जारी कर दिया है। शनिवार को जापान के मंत्री यासुकाजू हमादा ने सेल्फ डिफेंस फोर्सेस से कहा है कि वायु सीमा में घुसने वाले किसी भी मिसाइल को मार गिराने के लिए तैयार रहें। इसी के साथ रेडियो तेहरान से समाचार समाप्त हुए।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज।
राजनीतिक चर्चा।
श्रोताओ, राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम में मोहम्मद मेहदी का सलाम स्वीकार कीजिए। ईरान और कतर ने द्विपक्षीय संबंध में विस्तार पर बल दिया। ईरान के राष्ट्रपति सैयद मोहम्मद इब्राहिम रईसी ने कतर नरेश के साथ टेलीफोनिक वार्ता में द्विपक्षीय संबंध में विस्तार पर बल दिया। राष्ट्रपति ने इस टेलीफोनिक वार्ता में कहा कि पड़ोसियों के साथ संबंधों में विस्तार और उसे मजबूत बनाना ईरान की विदेश नीति की प्राथमिकता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि विश्व के विभिन्न देशों में आज ईद उल फित्र बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। नाटो के महासचिव ने जो ये कहा है कि नाटो के सदस्य देशों के बीच यूक्रेन को नाटो में शामिल करने पर सहमति बन गई है, तो जर्मनी और हंगरी ने उनके इस दावे का विरोध किया है। ईरान और कतर ने द्विपक्षीय संबंध में विस्तार पर बल दिया। ईरान के राष्ट्रपति सैयद मोहम्मद इब्राहिम रईसी ने कतर नरेश के साथ टेलीफोनी वार्ता में द्विपक्षीय संबंध में विस्तार पर बल दिया। राष्ट्रपति ने इस टेलीफोनी वार्ता में कहा कि पड़ोसियों के साथ संबंधों में विस्तार और उसे मजबूत बनाना ईरान की विदेश नीति की प्राथमिकता है। पश्चिम एशिया में कतर वो देश है जिसके ईरान के साथ संबंध में बहुत कम उतार चढ़ाव आए हैं। समीक्षा पेश करें साथ ही अख्तर अब्बास।
ईरान और कतर ने द्विपक्षीय संबंधों में विस्तार पर बल दिया है। ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी ने कतर नरेश के साथ टेलीफोनी वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों में विस्तार पर बल दिया। राष्ट्रपति ने इस टेलीफोनी वार्ता में कहा कि पड़ोसियों के साथ संबंधों में विस्तार और उसे मजबूत बनाना ईरान की विदेश नीति की प्राथमिकता है। पश्चिम एशिया में कतर वो देश है जिसके ईरान के साथ संबंधों में बहुत कम उतार चढ़ाव आए हैं। ईरान और कतर के संबंध में जो बहुत कम उतार चढ़ाव आए हैं उसकी मुख्य वजह दोनों देशों की आपसी समझ है। कतर ने बड़ी शक्तियों के साथ ईरान की परमाणु वार्ता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस्लामी गणतंत्र ईरान कतर की संप्रभुता का सम्मान करता है और जब लगभग 4 वर्षों के दौरान सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब इमारात और बहरीन ने उसका बहिष्कार कर दिया था तो ईरान ने कतर की सहायता में किसी प्रकार के संकोच से काम नहीं लिया। यद्यपि ईरान और कतर के मध्य व्यापारिक लेन देन वांछित स्तर पर नहीं है परंतु दोनों देशों के मध्य दूसरे क्षेत्रों में संबंध अच्छे और विकास की ओर अग्रसर हैं। ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी ने कतर के शासक शेख तमीम के साथ वार्ता में दोनों देशों के बीच मौजूद संबंधों की ओर संकेत किया और समस्त क्षेत्रों में संबंधों में विस्तार हेतु दोनों देशों की तत्परता पर बल दिया। अशरकुल औसत ने कुछ समय पहले ईरान और कतर के मध्य संबंधों के बारे में अपनी एक रिपोर्ट में लिखा था कि ईरान और कतर के मध्य जो संबंध है उनका स्रोत ऐतिहासिक संबंध है और सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक संबंधों ने उन्हें और मजबूत कर दिया है। ईरान और कतर हालिया वर्षों में राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और ऊर्जा सहित समस्त क्षेत्रों में संबंधों में ध्यान योग्य विस्तार के साक्षी रहे हैं। ये द्विपक्षीय संबंधों में विस्तार हेतु दोनों देशों के अधिकारियों के ध्यान और प्रयास का सुपरिणाम है। ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी ने कतर नरेश शेख तमीम बिन हमद आल सानी के साथ टेलीफोनी वार्ता में जहां द्विपक्षीय संबंधों में विस्तार पर बल दिया था, वहीं इस वार्ता में इस बात पर भी बल दिया गया था कि इस्लामी गणतंत्र ईरान क्षेत्रीय विस्तार को वार्ता और एक दूसरे से सहकारिता के परिप्रेक्ष्य में देखता है। दूसरे शब्दों में ईरान एक दूसरे से वार्ता और सहयोग को विस्तार का कारण मानता है। साथ ही ईरान और कतर फिलिस्तीन के विषय के बारे में भी समान दृष्टिकोण रखते हैं और दोनों देशों ने फिलिस्तीनियों के खिलाफ ज़ायोनी शासन के अपराधों की भर्त्सना के साथ फिलिस्तीन के मजलूम जनता के समर्थन पर बल दिया। कतर नरेश के साथ टेलीफोनी वार्ता में दोनों पक्षों ने मस्जिदुल अक्सा में फिलिस्तीनी नमाजियों और रोजेदारों के खिलाफ ज़ायोनी सैनिकों के अपराधों की भर्त्सना की और इन अपराधों को रोकने के लिए इस्लामी देशों के मध्य समन्वय, एकता और एकजुटता पर बल दिया। जानकार हलकों का मानना है कि क्षेत्रीय देशों के मध्य वार्ता एक दूसरे के निकट आने और उनके मध्य सहयोग व सहकारिता में जहां वृद्धि का कारण बनेगी, वहीं विदेशियों विशेषकर अमरीकी हस्तक्षेप को रोकने में भी मदद मिलेगी और क्षेत्रीय देशों के आंतरिक मामलों में विदेशियों के हस्तक्षेप का न होना इन देशों की बहुत सी समस्याओं के समाधान का कारण बनेगा और साथ ही विदेशी हस्तक्षेप का न होना क्षेत्रीय देशों की शांति, सुरक्षा और प्रगति का कारण भी बनेगा।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा।
दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि विश्व के विभिन्न देशों में आज عید الفطر بڑے ہرش الاس کے ساتھ منائی جا رہی ہے. بھارت نیتر کشمیر میں بھی عید الفطر منائی جا رہی ہے. اس سمند میں سب سے بڑا جھمڑا درگاہ حضرت بل میں ہوا, جس میں جموں کشمیر کے دو بھوتپورو مکھ منتریوں نے بھی بھاگ لیا, جبکہ پرشاسن نے شری نگر کی ایتیاسک جامع مسجد میں نماز پڑھنے پر پرتبند جاری رکھا.
بھارت پرشاسن جموں کشمیر میں آج عید الفطر کے اوسر پر نماز عید کے بڑے بڑے اجتماعات آیوجت ہوئے, جس میں بھاری سنکھیا میں مسلمانوں نے بھاگ لیا. اس حوالے سے سب سے بڑا اجتماع درگاہ آثار شریف حضرت بل میں آیوجت ہوا, جس میں گھاٹی کے وبھن چھیتروں سے آئے ہوئے ہزاروں کی سنکھیا میں لوگوں نے حصہ لیا. اس اوسر پر دو بھوتپورو مکھیہ منتری ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور محبوبہ مفتی بھی اس سماروہ میں شامل تھی. یہاں یہ بات الیکھنی ہے کہ ایک بار پھر پرشاسن نے سری نگر کی ایتہاسک جامع مسجد میں نماز عید پر پرتبند جاری رکھا, اور یہاں ایک بار پھر نماز عید پڑھنے کی انومتی نہیں دی گئی, جس پر دھارمک نیتا سیکھ پا ہوئے ہیں اور انہوں نے اس قدم کو دھارمک معاملات میں مداخلت قرار دیا ہے. آثار شریف درگاہ حضرت بل میں ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے بھی اس کا کھنڈن کیا اور کہا کہ میروائز عمر فاروق جو اپنے گھر میں نظر بند ہیں انہیں بھی رہا کیا جانا چاہیے. انہوں نے کہا کہ جموں میں جو گھٹنا گھٹی ہے وہ نندنی ہے, پرنتو اس کے بعد جو گرفتاریوں کا سلسلہ وہاں شروع کیا گیا ہے, میرا یہ ماننا ہے کہ اس میں بے گناہوں کو نہیں پکڑنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ اگر بے گناہ لوگوں کو گرفتار کیا گیا تو اس کے گمبھیر پرینام نکلیں گے.
لیکن آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں, بہت ضروری ہے آج جب ان نے پونچھ میں کاروائی شروع کی ہے, میں بے گناہوں کو نہیں پکڑنا چاہیے, اس کی طرف ان کو خیال رکھنا چاہیے. غلطی ان کی ہے اور بے گناہ لوگوں کو یہ پکڑتے دکڑتے ہیں, پھر ان کو بہت سخت مار پیٹ کرتے ہیں, یہ غلط طریقہ ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. مجھے بہت افسوس ہے, یہ ہونا نہیں چاہیے. ہر جگہ نماز پڑھنی چاہیے اور لوگ آرام سے پڑھنا چاہتے ہیں, پڑھنی چاہیے. اور مولوی فاروق صاحب, عمر فاروق صاحب کو بھی چھوڑنا چاہیے کہ وہ بھی اس میں شامل ہوتے, لوگوں کے سامنے تاب کرتے اور اچھی باتیں لوگوں کو سناتے, جس سے کہ لوگ امن میں رہیں اور جو یہ برائیاں ہیں ان کو دور کر سکتے تھے.
اس بیچ گھاٹی کے وبھن چھیتروں میں جو سبھائیں آج عید الفطر کے حوالے سے آیوجت ہوئی, اس میں دھارمک نیتاؤں نے جہاں عید الفطر پر وستار کے ساتھ روشنی ڈالی, وہیں پر انہوں نے کہا کہ وشو بھر کے مسلمانوں کو جو سمسیائیں ہیں ان کا سمادھان صرف اور صرف مسلم ایکتا میں ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم مذہبی منافرت کو دور کریں اور ایکتا کے ساتھ آگے بڑھیں. اس اوسر پر کئی دھارمک نیتاؤں نے کہا کہ وشو میں جو بدلتی پرستھتیاں ہیں اس کا وہ سواگت کرتے ہیں. ان کا سیدھا اشارہ ایران اور سعودی عرب کی طرف تھا. سپتی محمد حسن, ریڈیو تہران, سری نگر.
ناٹو کے مہا سچیو نے جو یہ کہا ہے کہ ناٹو کے سدس دیشوں کے بیچ یوکرین کو ناٹو میں شامل کرنے پر سہمتی بن گئی ہے, تو جرمنی اور ہنگری نے ان کے اس دعوے کا ویرودھ کیا ہے. ناٹو کے مہا سچیو نے شکروار کو کہا تھا کہ یوکرین کو ناٹو میں شامل کرنے کے سمبندھ میں ناٹو کے سدس دیشوں کے مدھیے سہمتی بن گئی ہے اور بھوشیہ میں یوکرین ناٹو کا سدسیہ بن جائے گا. سمیکشا پیش کریں ساتھ ہی میسم عباس.
ناٹو کے مہا سچیو جینس اسٹولٹنبرگ نے جو یہ کہا ہے کہ ناٹو کے سدسیہ دیشوں کے بیچ یوکرین کو ناٹو میں شامل کرنے پر سہمتی بن گئی ہے, تو جرمنی اور ہنگری نے ان کے اس دعوے کا ویرودھ کیا ہے. ناٹو کے مہا سچیو جینس اسٹولٹنبرگ نے شکروار کو کہا تھا کہ یوکرین کو ناٹو میں شامل کرنے کے سمبندھ میں ناٹو کے سدسیہ دیشوں کے بیچ سہمتی بن گئی ہے اور بھوشیہ میں یوکرین ناٹو کا سدسیہ بن جائے گا, کیونکہ ناٹو کے سدسیہ دیشوں نے اس پر سہمتی جتا دی ہے. ان کے اس دعوے کے ترنت بعد ناٹو کے دو سدسیہ دیشوں نے پرتکریا دکھائی ہے. ایک کا سمبندھ پشچمی یورپ سے ہے جبکہ دوسرے کا سمبندھ پوروی یورپ سے ہے. جرمنی کے پرتیرکشا منتری نے ناٹو میں یوکرین کی سدسیتا کے بارے میں ترنت نرنے کو رد کر دیا اور کہا کہ دروازہ کھلا ہے لیکن ابھی اس سمبندھ میں فیصلے کا سمے نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ یوکرین استھتی کو سمجھتا ہے. اسی پرکار جرمنی کے رکشا منتری نے کہا کہ شکروار کو جو بیٹھک ہو رہی ہے اس میں یوکرین کے ناٹو یا یورپی سنگ میں شامل ہونے کے بارے میں چرچا نہیں کی جائے گی. اس بیچ ہنگری کے پردھان منتری نے بھی ناٹو میں یوکرین کے شامل ہونے کے سمبندھ میں ناٹو کے مہا سچیو کے دعوے پر پرتکریا جتائی. انہوں نے ناٹو کے مہا سچیو کی کیو یاترا کی اور سنکیت کیا اور یوکرین کی ناٹو کی سدسیتا کے بارے میں ناٹو مہا سچیو نے جو کچھ کہا تھا اس پر سندیہ جتایا. ज्ञात रहे कि नाटो के महासचिव किसी पूर्व कार्यक्रम के बिना शुक्रवार को यूक्रेन की राजधानी कीव की यात्रा पर गए थे। उन्होंने अपनी यूक्रेन यात्रा के दौरान इस देश के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के साथ मुलाकात में नाटो के सदस्य देशों की ओर से यूक्रेन को दी जा रही सैन्य सहायता की सराहना की। नाटो में यूक्रेन की सदस्यता पर नाटो के दो सदस्य देशों का विरोध इस बात का सूचक है कि यूक्रेन को नाटो का सदस्य बनने के लिए अभी लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा और इस बात की गारंटी नहीं है कि वो नाटो का सदस्य देश बन ही जाएगा। सवाल ये पैदा होता है कि यूक्रेन वर्षों से नाटो का सदस्य बनना चाहता है पर आज तक उसे नाटो में शामिल नहीं किया गया, जबकि फिनलैंड को अभी कुछ दिन पहले ही नाटो में शामिल कर लिया गया। ऐसा क्यों है? इसके जवाब में बहुत से जानकार हलकों का मानना है कि यूक्रेन की नाटो में सदस्यता को लेकर रूस बहुत संवेदनशील है और इसे वो अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा समझता है। इन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि रूस ने यूक्रेन पर 24 फरवरी 2022 को जो हमला किया उसे मॉस्को की इसी चिंता के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। नाटो के सदस्य देश विशेषकर अमेरिका इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि यूक्रेन को नाटो में शामिल करने का मतलब रूस से सीधे टक्कर लेना है और आमतौर पर कोई भी देश रूस से सीधे सैन्य टकराव नहीं चाहता है क्योंकि इस टकराव में जानमाल की भारी तबाही हो सकती है। अब प्रस्तुत है अगला एक विशेष कार्यक्रम।
दोस्तों, ईद फित्र के शुभ अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं। मरियम मेहर दादी और मोहम्मद मेदी का सलाम स्वीकार कीजिए।
दोस्तों, इस शुभ अवसर पर रेडियो तेहरान आप सबकी सेवा में हार्दिक बधाई प्रस्तुत करता है। दोस्तों, रमजान का पवित्र महीना बीत गया और आज शवाल महीने की पहली तारीख है। कितने भाग्यशाली वे लोग हैं जिन्होंने रमजान के पवित्र महीने की बरकतों से खूब लाभ उठाया, महान ईश्वर की उपासना व बंदगी की, पवित्र कुरान की तिलावत की, अधिक से अधिक परोपकार किया और गुनाहों से परहेज किया। इस प्रकार के लोग मानो ऐसे हो गए हैं जैसे दोबारा उनका जन्म हुआ है। एक महीने के रोजे ने उन्हें पूरी तरह बदल दिया है। अगर कोई व्यक्ति एक दिन में कई बार नहाता है तो उसके शरीर पर किसी प्रकार का मैल नहीं होता और उसका शरीर पूरी तरह स्वच्छ होता है और वो स्वयं को हल्का महसूस करता है। ठीक यही हाल, बल्कि इससे भी अच्छी हालत का एहसास वो इंसान करता है जिसने एक महीने तक रोजा रखकर अपने पालनहार की उपासना की है। एक महीने के रोजे ने उसकी अंतरात्मा को पूरी तरह स्वच्छ बना दिया। जिस तरह साफ सुथरा वस्त्र धारण करने वाला इंसान इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं करता है कि उसका कपड़ा गंदा हो, ठीक उसी तरह एक महीने तक रोजा रखने वाला इंसान कभी भी इस बात को पसंद नहीं करता है कि कोई गुनाह करे और वो गुनाह उसकी अंतरात्मा को दूषित कर दे, क्योंकि हर गुनाह वास्तव में एक प्रकार का मैल होता है।
इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहि सलाम फरमाते हैं, मेरे पालनहार, मैंने जो भी गुनाह किया है या जो भी गलत व अनुचित कार्य अंजाम दिया है या जो बुरी सोच मेरे दिल में थी उससे तौबा व प्रायश्चित करता हूँ। मैं उस इंसान की तौबा करता हूँ जिसके दिल में पाप की तरफ वापसी का इरादा नहीं है। मैं शुद्ध तौबा करता हूँ, तो हे पालनहार, मुझसे कबूल फरमा और मुझे उस पर बाकी रख।
महान शिया विद्वान शेख मुफीद लिखते हैं, शवाल महीने की पहली तारीख को ईमानदार लोगों को जो ईद करार दी गई है उसकी वजह यह है कि वे रमजान महीने में अपने कर्मों को स्वीकार किए जाने से खुश हैं और महान ईश्वर ने उनके गुनाहों को माफ कर दिया है اور ان کی کمیوں پر پردہ ڈال دیا ہے، اور مہان ایشور کی اور سے شبھ سوچنا آئی ہے کہ روزہ رکھنے والوں کو بہت ادھک پرتیدان دیا جائے گا۔ مومن اس بات سے بہت پرسن ہیں کہ رمضان مہینے کی رات اور دن کی اپاسناؤں کے کارن انہیں مہان ایشور کے سامیپیہ کا سوبھاگیہ پراپت ہو گیا ہے۔ اس دن غسل و اسنان نردھارت کر دیا گیا ہے اور یہ گناہوں سے پوترتا کی علامت ہے۔ آج کے دن سگند لگانا، سندر و اچھا وستر دھارن کرنا، کھلے آسمان کے نیچے جا کر نماز پڑھنا، ان سب کے پیچھے رہس ہیں۔
مسلمان انسان کے لیے ہر دن واستوک ارتھوں میں ایک عید ہو سکتا ہے۔ جب وہ گناہوں سے دور رہے تو اس کے لیے عید ہے۔ رمضان کا پوتر مہینہ سماپت ہونے کے بعد جو عید آتی ہے اسے عید فطر کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اپنی مول پروتی کی اور پلٹتا ہے، یعنی گناہ نہ کرنے کی اور پلٹتا ہے۔ شوال کی پہلی تاریخ یعنی نئے جیون کا شبھارمبھ۔ اب سے انسان گناہ نہیں کرے گا، اس کے کان ارتہین باتوں کو نہیں سنیں گے، زبان سے نہ کسی کو کشٹ پہنچائے گا اور نہ کسی کی برائی کرے گا، ہاتھ سے دوسروں کی بھلائی کرے گا۔ وہ نہ کیول پاپ نہیں کرے گا بلکہ پاپ کرنے کی سوچے گا بھی نہیں۔ پاپ کرنے کی سوچ پاپ نہیں ہے، مگر پاپ کے بارے میں ادھک سوچ انسان کو پاپوں کی اور اکساتی و لے جاتی ہے۔
پاپ کرنے کی سوچ اس دھوئیں کی بھانتی ہے جو مکان یا کمرے کو نہیں جلاتا ہے، پرنتو کمرے یا مکان کی چمک کو ضرور دھومل کر دیتا ہے۔ اسی طرح پاپوں کے بارے میں سوچنا پاپ نہیں ہے، پرنتو انسان کے استتو کو دھومل و پردوشت ضرور کر دیتا ہے۔
مومن ایشوریہ پرکاش سے دیکھتا ہے۔ دھیان یوگیہ بات یہ ہے کہ روایت میں کہا گیا ہے کہ مومن ایشوریہ پرکاش سے دیکھتا ہے۔ کہنے کا تاتپریہ یہ ہے کہ وہ انسان اپنے پالنہار کے پرکاش سے دیکھتا ہے جو سوئم کی آتم شدھی کر چکا ہے، سوئم کو سدگنوں سے سسجت کر چکا ہے۔ کتنی خوشی کی بات ہے کہ مہانیشور سچے اور واستوک مومن کو اپنا نور و پرکاش پردان کرتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، اور جو انسان ایشوریہ پرکاش سے دیکھتا ہے وہ چیزوں کو دیکھنے و سمجھنے میں بہت کم غلطی کرے گا۔ یہ چیز بھی اس بات پر نربھر کرے گی کہ وہ کس حد تک مہانیشور کے پرکاش سے دیکھتا ہے۔ یہی نہیں، جو انسان ایک مہینے تک روزہ رکھتا اور اپنے پالنہار کی آرادھنا کرتا ہے اس کے اندر اچھائیوں و بھلائیوں کے انکور پھوٹتے ہیں۔
روایت میں ہے کہ اگر کوئی انسان 40 دن تک اپنی نیت کو شدھ کر لے اور سمست کاریوں کو مہان ایشور کی پرسنتا کے لیے انجام دے تو اس کی زبان سے حکمت کے سوتے جاری ہوتے ہیں۔ جو انسان جتنا ادھک گناہوں اور برائیوں سے سوئم کو دور کر لیتا ہے، مہان ایشور اسے اتنا ہی اچھائیوں سے نوازتا ہے۔ جو انسان یہ چاہتا ہے کہ مہان ایشور اس پر وشیش کرپا درشٹی کرے تو وہ سوئم کو پاپوں سے دور کرنے کا ابھیاس کرے، اور یہی ابھیاس ایک سمے میں اسے وہ استھان پردان کرتا ہے جس کی وہ کلپنا بھی نہیں کیے رہتا، اور مہان ایشور کی کرپا درشٹی لوک پر لوک میں اس کی سفلتا و مکتی کا کارن بنتی ہے۔
جو انسان ایک مہینے تک روزہ رکھ کر سموچے برہمانڈ کے رچیتا کی اپاسنا کرتا ہے، اس کے اندر پاپوں و گناہوں سے مقابلے کی کشمتا اتپن ہو جاتی ہے، اس کے اندر دھیرے و سہنشیلتا پیدا ہو جاتی ہے۔ آیتوں و روایتوں میں دھیرے کی بہت پرشنسا کی گئی ہے۔ مہان ایشور نے خود پوتر قرآن میں کہا ہے کہ وہ دھیرے کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ عید الفطر واسطو میں مہان ایشور کی نعمتوں کی ورشا کا دن ہے، پرنتو اس ورشا سے صحیح ارتھوں میں وہی لابھانوت ہوتا ہے جس نے رمضان کے پوتر مہینوں میں روزہ رکھ کر مہان ایشور کی اپاسنا کی ہو اور گناہوں سے پرہیز کیا ہو۔
ایران کے ایک سمکالین دھرم گرو آیت اللہ ملکی تبریزی جن روزے داروں کو عید الفطر منانے کا سوبھاگیہ پراپت ہوتا ہے انہیں کئی بھاگوں میں بانٹتے اور کہتے ہیں جو سب سے کم درجے کے روزے دار ہوتے ہیں وہ بھی مہان ایشور کی نعمت سے لابھانوت ہوتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کچھ لوگوں نے کیول انیوار دائتو ادا کرنے کے لیے روزہ رکھا ہے اور کھانے پینے اور ان چیزوں سے پرہیز کیا جو روزے کی حالت میں حرام ہیں، اور اسے انہوں نے مہان ایشور کی اپاسنا اور اس پر احسان سمجھا جبکہ گناہوں سے پرہیز نہیں کیا۔ روزے کی حالت میں جھوٹ بولا، دوسروں پر آروپ لگایا، دوسروں کو برا بھلا کہا اور دوسروں کو کشٹ پہنچانے سے پرہیز نہیں کیا۔ اس پرکار کے لوگ یدیپی گناہگار روزے دار ہیں اور اگر وہ مہان ایشور کے بارے میں اچھا وچار و خیال رکھتے ہیں تو جنہوں نے جتنا روزہ رکھا ہے مہان ایشور اس کا انہیں پرتیدان دے گا۔
اسی پرکار آیت اللہ ملکی تبریزی لکھتے ہیں کہ جو روزے دار روزے کے سمے اس بات کو دشٹی میں رکھتے ہوئے کہ ان سے کوئی گناہ نہ ہونے پائے، دوسروں کی برائی نہ ہونے پائے، دوسروں کو برا بھلا نہ کہیں، پرنتو اس میں ویسا کرنے میں پوری طرح سفل نہیں ہو پائے، کبھی گناہ بھی کر بیٹھے پرنتو توبہ کیا، تو مہانیشور اس پرکار کے روزے داروں کی برائیوں کو اچھائیوں میں بدل دے گا اور ان کی اپاسنا کا پرتیدان اس سے بھی اچھا دے گا جس کی وہ کلپنا کرتے تھے۔ اس بیچ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے پریم اور شردا کے ساتھ اپنے پالنہار کی آواز پر لبیک کہا، شوق سے بھوک پیاس برداشت کیا اور پوری خوشی کے ساتھ رمضان کے پوتر مہینے کو پورا کیا۔ ان لوگوں نے پوری تنمیتا کے ساتھ اپنے پالنہار کی آواز پر لبیک کہا، نیک کاریوں کو انجام دینے میں جلدی کی۔ مہانیشور اس پرکار کے لوگوں کو اپنا سامپیہ پردان کرے گا، انہیں اپنی بارگاہ میں اپنے نیک بندوں کے ساتھ رکھے گا، ان لوگوں کو ایسا پرکاش پردان کرے گا جسے کسی نے نہ دیکھا ہوگا اور کسی کے دل میں اس کا وچار تک نہ آیا ہوگا۔
دوستو، عید الفطر مسلمانوں کی ایک بڑی عید ہے اور کچھ اسلامی دیشوں میں اس کے اپلکش میں کئی دن چھٹیاں ہوتی ہیں اور ایک مہینے کے روزے کے بعد اپنی اپنی پرمپرا کے انوسار اس کا سواگت کرتے ہیں اور اس اوسر پر خوشی مناتے ہیں۔ عید ملنے کے لیے ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں، نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں، بچوں اور چھوٹوں کو عیدی بھی دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ دوپہر یا شام کے کھانے پر اپنے دوستوں اور نکٹ سمبندھیوں کو آمنترت کرتے ہیں، کچھ لوگ ایک دوسرے کو بہت سی چیزیں بھینٹ کرتے ہیں۔ عید اور عید کے موقع پر جو ماحول ہوتا ہے اس سے مسلمانوں کے مدھ پریم اسنیہ اور بھائی چارے کا ایک وشیش پرکار کا واتاورن اتپن ہو جاتا ہے، لوگوں کے مدھ ساماجک دوریاں کم ہو جاتی ہیں۔
عید الفطر کے دن کی ایک وشیشتا فطرہ دینا ہے۔ فطرہ ایک نیت دھارمک راشی ہوتی ہے جو پریوار کے ہر سدسیہ پر انیواریہ ہوتی ہے۔ جو چھوٹا بچہ بھی ہوتا ہے اس کی طرف سے بھی فطرہ دینا ضروری ہوتا ہے۔ اس فطرے کا سب سے بڑا فائدہ وہ ادیش غریب پریواروں کی سہایتا کرنا ہوتا ہے۔ روزے دار انسان کی خوشی میں چار چاند اس وقت لگ جاتا ہے جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کی سہایتا سے نردھن لوگ بھی خوش ہو گئے ہیں، وشیش کر جب روزے دار انسان یہ دیکھتا ہے کہ لوگوں کی سہایتا سے اناتھ بچوں کے چہروں پر بھی مسکان آ گئی ہے اور وہ بھی نئے وستر پہنے ہیں اور ان کے گھر میں اچھا پکوان پک رہا ہے۔ اس سمے دوسروں وشیش کر روزے دار کو جس آدھیاتمک خوشی کا احساس ہوتا ہے اسے شبدوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔
دھیان یوگ بندو یہ ہے کہ زکات فطرہ کی رقم دوپہر کی نماز سے پہلے ادا ہو جانی چاہیے۔ جو لوگ زکات فطرہ کے پاتر ہیں ان تک یہ دھارمک راشی پہنچ جانی چاہیے۔ اس بات کو بھی دھیان میں رکھا جاتا ہے کہ جو انسان بیماری یا بڑھاپے کے کارن یا بچہ ہونے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا ہے تو اس پر بھی زکات فطرہ انیواریہ ہے۔ سارانش یہ کہ عید فطر خوشیوں کا تیوہار ہے اور یہ خوشی دوسروں وشیش کر غریبوں اور اناتھوں کو خوش کرنے سے اپنے شکھر پر پہنچ جاتی ہے۔
तो दोस्तों, कार्यक्रम की समाप्ति से पहले ईद फित्र के शुभ अवसर पर एक बार फिर आप सबकी सेवा में हार्दिक बधाई प्रस्तुत करते हैं।
श्रोताओं, प्रस्तुत है अंतिम कार्यक्रम अच्छी आदतें। अच्छी आदतें।
दोस्तों, कार्यक्रम अच्छी आदतें लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं स्वाति और सैयद मैसाम का सलाम स्वीकार कीजिए।
कार्यक्रम की पिछली कड़ी में हमने उल्लेख किया था कि आत्मज्ञान प्राप्ति के कई तरीके हैं, लेकिन अगर सभी लोगों के लिए कोई एक नुस्खा होता तो ये काम बहुत आसान हो जाता। हालांकि इस बारे में जितने भी शोध हुए हैं उनसे पता चलता है कि आत्मज्ञान का एक ही तरीका सभी के लिए काफी नहीं हो सकता। इसके बावजूद जितने भी रास्ते सुझाए गए हैं उनके बीच काफी समानताएं पाई जाती हैं।
इसके लिए सबसे पहला चरण ईगो पेरेंट है। अगर पहले चरण में हम खुद को साबित करने और माँ बाप के दिशा निर्देशों पर अमल करने के लिए भरपूर प्रयास करते हैं, तो दूसरे चरण में यानी ईगो वर्ल्ड में हम दुनिया के सामने खुद को साबित करने के लिए पूरा दमखम लगा देते हैं। आत्मज्ञान का तीसरा चरण ईगो सेल्फ है। यह चरण किसी भी इंसान के विकास का सबसे दिलचस्प चरण है। जब हम इस चरण में कदम रखते हैं तो इतनी बड़ी दुनिया में खुद से ज्यादा हम किसी को स्वीकार नहीं करते। यहाँ खुद को स्वीकार करने का मतलब अहंकार या अभिमान नहीं है, बल्कि इस चरण में हम खुद को अच्छी तरह से जानने लगते हैं। हम अपनी खूबियों और खामियों को जानते हैं और सिर्फ उस व्यक्ति से प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं जिसे अपने बराबर समझते हैं या अपने से बेहतर समझते हैं।
आत्मज्ञान का अंतिम चरण ईगो गॉड है। इस चरण में हम खुद को भी पीछे छोड़ देते हैं। इस चरण में पहुंचकर लोग कहते हैं कि अब हमारे लिए अगर किसी चीज का कोई महत्व है तो वो है खुदा को राजी करना और उसकी प्रसन्नता हासिल करना। ये बात सही है, लेकिन उस वक्त कि जब हम खुदा या ईश्वर को सही रूप में परिभाषित करें और उसे इस ब्रह्मांड का रचयिता और हर शक्ति से ज्यादा शक्तिमान माने। इस चरण में इंसान अपने सीमित वजूद से निकलकर एक असीम वजूद से जा मिलता है। अपनी पहचान के इस उतार चढ़ाव भरे और घुमावदार चरण के अंत में हमें पता चलता है कि ये समस्त चीजें उस शक्ति के मुकाबले में कुछ भी नहीं है जिसने जीवन दिया है। इस चरण में पहुंचकर हमें असली खुशी, प्रेम, संतोष और ईमान का सही एहसास होता है। यहाँ पहुंचकर हमें दुनिया की कोई परवाह नहीं रहती। जो शख्स इस चरण में पहुंच जाता है वो फिर अपने लिए और दूसरों के लिए भी शांति का वातावरण उत्पन्न करता है।
मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आत्मज्ञान से हमें कल्याण का मार्ग प्राप्त होता है और आत्मज्ञान का अभाव आपको गलत रास्ते पर डाल सकता है। आत्मज्ञान के अभाव के परिणामों के मद्देनजर आत्मज्ञान का महत्व हमारे लिए अधिक उजागर हो जाता है। खुद पर काबू पाना भी आत्मज्ञान के महत्व को दर्शाता है। जब इंसान खुद अपने बारे में सही जानकारी रखता होगा तो वह समझ सकेगा कि कौन सी चीज उसे प्रोत्साहन प्रदान करती है। इससे उसे बुरी आदतों से छुटकारा पाने और अच्छी आदतों को अपनाने में मदद मिलेगी। इससे आपको ऐसी अंतर्दृष्टि प्राप्त होगी कि आप उसकी मदद से मूल्यों और उद्देश्यों को पहचान सकेंगे, जिससे आपका इरादा और मजबूत होगा।
जब प्राचीन यूनान के दार्शनिक सोक्रेट से कहा गया कि वो अपने सभी ज्ञान और दर्शन को एक वाक्य में बयान करें, तो सोक्रेट ने कहा आत्मज्ञान। सोक्रेट जैसे महान दार्शनिक के इस जवाब से भी आत्मज्ञान के महत्व का पता चलता है। यहाँ ये जानना दिलचस्प होगा कि जब कोई व्यक्ति अपने कार्यों की समीक्षा करता है तो उसके सामने एक समस्या ये आती है कि खुद को क्षमा करने में लोग कठोर होते हैं। दूसरे ये कि आत्मज्ञान विकसित करना सुख और कल्याण प्राप्त करने में प्रभावी होता है, इसलिए इस तरह की सोच उचित नहीं है। हम सभी को आत्मज्ञान पर बहुत समय बिताना चाहिए क्योंकि ये हमारे कल्याण के लिए काफी महत्वपूर्ण है।
ये जानने के लिए कि आप खुद को कितना पहचानते हैं, कुछ सवालों के जवाब आपकी काफी मदद करेंगे। माँ बाप के प्रति आपकी भावना कैसी है? आपको क्यों और किस वजह से गुस्सा आता है? आप जब कोई फैसला लेते हैं तो किन कारणों को मद्देनजर रखते हैं? आप कब दूसरों के साथ खुश होते हैं और कब दुखी? आपके जब कोई आलोचना करता है तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है? आप कौन सा काम करके सबसे ज्यादा खुश होते हैं? दूसरों की कौन सी खूबियां आपको आकर्षित करती है? किस बात से या किस चीज से आप उत्तेजित हो जाते हैं? आप अपना खाली समय किस तरह से गुजारना ज्यादा पसंद करते हैं? हम सभी को इन सवालों के ध्यानपूर्वक जवाब देने चाहिए ताकि हमें खुद को पहचानने में मदद मिल सके।
मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि आत्मज्ञान एक मुश्किल काम है क्योंकि हम अक्सर काम अनजाने में अंजाम देते हैं। जैसा कि हमने कार्यक्रम की शुरुआत में ही कहा था कि हम अपने आप को भुलाने या माफ करने में कठोर होते हैं। हम हमेशा अपनी भावनाओं, नियत और व्यवहार के बारे में सचेत रहें, यह बहुत मुश्किल होता है। दूसरे शब्दों में अनजान होना बहुत ही आसान होता है। हम सभी अपने आधे से ज्यादा जीवन में इसी स्थिति में होते हैं।
इसी तरह हमारी प्रेरणाएं हमें गाइड करती हैं। हमारा दिल हमसे कहता है कि आराम से रहो और आनंद लो। आत्मज्ञान के लिए ये बिंदु भी महत्वपूर्ण है कि हम हर उस चीज से बचते हैं जो हमें पसंद नहीं होती है। दरअसल हम ऐसी किसी भी चीज का सामना तक नहीं करना चाहते हैं। हमारे भीतर ऐसी इच्छाएं और भावनाएं होती हैं जो हमारे अपने बारे में दृष्टिकोण को चुनौती देती हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बहुत गहराई से देखें तो हमें पता चलेगा कि हम ऐसी नौकरी कर रहे हैं या किसी ऐसे रिश्ते में हैं जो हमें पसंद नहीं है या हमारे लिए उचित नहीं है। हम खुद अपने बारे में बहुत अधिक जानने से कतराते हैं क्योंकि ये जानकारी उस अल्पकालिक शांति को भंग कर देगी जिसके हम आदि हो गए हैं।
हम अपने विचारों से पहचाने जाते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर हमारे सभी काम हमारे विचारों का परिणाम नहीं होते हैं। दूसरे शब्दों में हम बुद्धि, शरीर और भावनाओं का योगफल हैं। अगर हम ये माने कि हम सिर्फ अपने विचारों का नतीजा हैं, तो हम आत्मज्ञान हासिल नहीं कर सकते क्योंकि इस तरह से हम अपने सिर्फ एक ही आयाम पर नजर डाल रहे हैं। जब तक हम अपने विचारों से खुद को पहचानने या खुद को परिभाषित करने का प्रयास करेंगे तो हम वास्तविकता तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसी तरह से जब हम सिर्फ अपने विचारों के लिए पहचाने जाते हैं तो हमारे लिए दूसरों के साथ संबंध स्थापित करना मुश्किल हो जाता है।
खुद को पहचानने के लिए एक महत्वपूर्ण तरीका ये है कि हम इस विषय को गंभीरता से लें, क्योंकि जब हम उसके महत्व को समझेंगे तो उसे अंजाम देने में भी गंभीर होंगे। हम इस विषय से संबंधित किताबों पर अध्ययन कर सकते हैं। हमें अपने बारे में मौजूद वास्तविकताओं पर ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि अगर हम उन्हें पसंद भी नहीं करते हो तब भी हमें अपने भीतर झांकने के लिए समय निर्धारित करना चाहिए।
सही समय और सही मौके पर आत्मज्ञान हासिल करने से हम कई मौकों पर خود کو دھوکہ دینے سے بچ سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنے روزمرہ کے جیون میں اپنی انجان بھاوناؤں کے مقابلے میں زیادہ پرتیرودھ نہیں کریں تو ہم آسانی سے انجان بھاوناؤں کو جانی پہچانی بھاوناؤں میں بدل سکیں گے۔ اس کے لیے ہمیں چھوٹی چھوٹی اچھاؤں پر دھیان دینا چاہیے لیکن انہیں پورا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے اندر ذمہ داری کا احساس ہوگا تو ہم اپنی ناکامیوں اور ناراضگی کے لیے دوسروں کو دوش نہیں دیں گے بلکہ اس کے بجائے ہم یہ پریاس کریں گے کہ اپنے اندر جھانک کر دیکھیں کہ کون سی چیز ہمیں دکھی کر رہی ہے۔
جب ہم آتم گیان حاصل کر لیں گے تو ہمارے جیون میں سکاراتمک بدلاؤ آئیں گے، کیونکہ اس وقت ہمیں پتا چلے گا کہ ہم نے خود کو کیوں پیچھے رکھا ہوا ہے یا کیوں ہم پچھڑے ہوئے تھے۔ ہم اپنی بھاوناؤں کی ذمہ داری سویکار کریں گے، پرینام سوروپ ہمارے خود سے سمبندھ اچھے رہیں گے۔ ہم اس سوال کا جواب کھوجنے کے لیے آتم گیان حاصل نہیں کر رہے ہیں کہ سمسیا کیا ہے، بلکہ ہمیں اپنے ویوہار اور سوچ کا ادھین کرنا ہے۔ اس کے بعد اگر ہمیں پتا چلے کہ سمسیا دوسروں کے کارن ہے تو پھر اس کا سمادھان نکالنے کا پریاس کریں گے۔
آتم گیان کے بعد ہم ان کاریوں کو انجام دیتے ہیں جنہیں آسانی سے انجام دے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اسرکشا کی بھاونا اور غیر سارتھک پرتسپردھا سے بچتے ہیں۔ ہم آلوچناؤں کا اچھی طرح سے سامنا کر سکتے ہیں اور وچلت نہیں ہوتے ہیں۔
اسی پرکار آتم گیان حاصل کرنے کے بعد پیسوں کو لے کر ہمارے اندر زیادہ اسٹریس نہیں رہے گا۔ ہمارے لیے جو چیز زیادہ مہتوپورن ہے اسے لے کر زیادہ جاگرک ہو جائیں گے، اسی لیے پیسوں کو برباد نہیں کریں گے اور حد سے زیادہ پیسہ جمع کرنے کو لے کر بھی چنتت نہیں رہیں گے۔ اپنے رشتوں کو لے کر زیادہ سجگ رہیں گے۔ جو شخص خود کو پہچان لیتا ہے وہ معمولی چیزوں کی اور آکرشت نہیں ہوتا ہے۔ تو دوستوں، اسی کے ساتھ آشا کارکرم یہی سماپت ہوتا ہے، ہمیں انمتی دیجیے۔
اسی کے ساتھ یہ سبھا یہیں پر سمپن ہوتی ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔